بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اس جز پر گفتگو چل رہی تھی. مسلمان وہ ہیں, کامل مسلمان وہ ہیں جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو سلامت رکھے. اب اس میں زبان کے ذریعے سے جتنی بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے, ہاتھ کے ذریعے سے جتنی بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے, وہ تمام کی تمام تکلیف مراد ہے. اسی طریقے سے انسان اپنی ذات سے کسی دوسرے انسان کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچاوے. زبان اور ہاتھ کی تخصیص نہیں ہے, بلکہ ایک انسان دوسرے انسان کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچاوے. حدیث شریف کے اندر زبان اور ہاتھ کا جو تذکرہ ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ عام طور پر تکلیف پہنچانے کے یہ دو ذریعے ہیں. عام متن ایک انسان دوسرے انسان کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے, ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے. ورنہ عموم ہے کہ جس طریقے سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہو وہ طریقہ اپنانا منع ہے. پھر یہاں ایک قید لگانے کی کہ حدیث شریف کے اندر جو تکلیف پہنچانے سے منع کیا, یہ وہ تکلیف ہے جو غیر معقول ہو. جو تکلیف پہنچانا غیر معقول ہو, ورنہ جو تکلیف پہنچانا معقول شرعی ہو, وہ تکلیف پہنچانا تو عین تقاضۂ ایمان ہے. مثال کے طور پر کسی نے زنا کیا تو زنا کرنے والے پر حد جاری کر کے تکلیف پہنچانا, چور کے اوپر حد سرقہ جاری کر کے تکلیف پہنچانا, شراب پینے والے پر حد سرقہ حد شرب خمر جاری کر کے اس کو تکلیف پہنچانا, یہ عین تقاضۂ ایمان ہے. تو حدیث شریف کا مطلب ہے غیر معقول طریقے سے ایذا پہنچانا. ورنہ اگر معقول طریقے سے ایذا پہنچانے کا شرعی ایذا کا مقام ہو تو وہ تو تقاضۂ ایمان میں سے کہا جاتا ہے. تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. کامل مسلمان وہ ہیں جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے سلامت رکھے. بھائی, اگر پورے دورے کے سال آپ لوگوں نے اتنا سیکھ لیا تو کامیاب ہو. پورے سال میں یہی ایک سبق سیکھ لیا کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے کی, تو سمجھو کسی درجے میں آپ مولوی بن گئے. تو یہ عزم کر لو کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے, اپنی عمل سے, اپنی ذات سے کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچاوے. دیکھیے, شریعت میں کچھ مواقع میں آپ کو بتلاتا ہوں. اہم اہم عبادت کے مواقع, لیکن محض تکلیف پہنچنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے عبادت میں تخفیف آ گئی. نمبر ایک, نماز با جماعت کتنا بڑا ثواب کا کام ہے, لیکن کسی آدمی کو جوزام کی تکلیف ہو, کسی آدمی کو پیپ نکلتا رہتا ہو اور وہ آدمی مسجد میں جائے گا تو دوسرے مسلیوں کو تکلیف پہنچے گی, تو ایسے مسلی کو شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے گھر میں اکیلا نماز پڑھ لے, کافی ہے, تجھے مسجد جانے کی ضرورت نہیں. چونکہ تو مسجد جائے گا تو तो तेरे पीप की वजह से, तेरे जुजाम की वजह से दूसरे नमाजियों को तकलीफ पहुँचेगी। अब नमाज बा जमात जैसा अहम तरीन अमल, लेकिन दूसरों को ईज़ा पहुँचने की वजह से उसमें भी शरीयत ने जो है तकफीफ कर दी। अंदाज़ा लगाओ। नंबर दो, हजर असवद को बोसा देना कितना बड़ा सवाब का काम है। हदीस शरीफ में आता है, जिसने हजर असवद से बोसा लिया उसने अल्लाह से मुसाफहा किया, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन हजर असवद को बोसा देने में किसी को धक्का देना पड़े, धक्का मुक्की करनी पड़े, ईज़ाए मुस्लिम हो जाए, तो ऐसे मौके पर हजर असवद का बोसा देने के लिए जाना गुनाह बन जाता है। तीसरा मौका देखो, आप किसी ऐसी नामुनासिब जगह पर खड़े हो गए, नमाज की नियत बांध ली और जो है लोग बेचारे वहाँ से गुज़रते हैं, लोगों की गुज़रगाह है, लोगों की आमदो रफ्त की जगह है, ऐसी जगह पर आप नमाज की नियत बांध करके खड़े हो गए। अब देखिए नमाज पढ़ना कितना अच्छा अमल, लेकिन आप लोगों की गुज़रगाह पर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए तो लोगों का गुज़रना मुश्किल हो जाएगा, लोगों को गुज़रने में तकलीफ़ पहुंच जाएगी, तो फिर इस सूरत में गुनाह मुसल्ली पर आएगा कि तू बेमौका खड़ा हो गया। दूसरी जगह खड़ा रहना चाहिए जहां आड़ हो, पर्दा हो, जहां लोगों को कोई तकलीफ़ न हो, ऐसी जगह तुझे खड़ा रहकर नमाज पढ़ना चाहिए। चौथा नंबर देखो, बैतुल खला में गए और जो कुछ नापाकी निकली वो ऊपर ऊपर छोड़ के आ गए। बहुत से लोगों की आदत होती है इस्तिंजा करने के बाद पानी नहीं डालेंगे, इस्तिंजा करने के बाद नापाकी जो है फ्रश करके जो है बहा के ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे। अब बाद में कोई आदमी अंदर गया तो छी, ये क्या दूसरे का बैत पाखाना देखने का, कितनी तकलीफ़ होगी दूसरे आदमी को। तो आपने पानी बहाया नहीं, दूसरे को तकलीफ़ पहुंची आपकी नापाकी देख करके, ये गुनाहे कबीरा के दर्जे के अंदर आ जाती है। देखो कितनी ख़तरनाक तकलीफ़। मैं सबसे पहली मर्तबा जब साउथ अफ्रीका गया था, हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब दामत बरकातुहुम के साथ, तो वहाँ साउथ अफ्रीका में एक साहब से मुलाकात कराई गई, जो हजरत मौलाना सैयद बदर आलम साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ख़ास रह चुके थे। तो पूछा उनको कि हजरत मौलाना की कोई ख़ास आदत बतलाओ, तो कहा वो इस्तिंजा करने के बाद खूब पानी बहाते थे ताकि नापाकी अंदर भी ना दिखे। वो जो टब होता है उसमें जो पाइप वाला हिस्सा होता है वहाँ भी नापाकी ना दिखे, इसलिए कि वो जो टब है उससे आपने धो डाली, लेकिन वहाँ अंदर रही तो वहाँ पर भी कोई जाएगा तो नज़र पड़ेगी तो उसको तकलीफ़ होगी। फिर ये कि पानी ज़्यादा डाल देंगे तो बदबू भी ख़त्म हो जाएगी, तो कहा कि वो बिल्कुल बदबू को भी ख़त्म कर देते थे ताकि बाद में जाने वाले को तकलीफ़ न पहुँचे। देखिए दूसरे को आदमी ज़रा सी बेहतियाती की वजह से कैसी कैसी तकलीफ़ पहुँचाता है। आप इस्तिंजे खाने में गए, इस्तिंजा करके निकल गए, इस्तिंजा गंदा छोड़ दिया, तो फिर जो है बाद में जो जाएगा बेचारे को कितनी तकलीफ़ होगी, ये भी ईज़ाए मुस्लिम के अंदर शामिल है। पाँचवा नंबर, ट्रेन में लिखा होता है कि जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी हो तो आप बैतुल खला का फ्लश न डबाए, इसीलिए कि आप ट्रेन स्टेशन पर रुकी हो इस्तिंजा करेंगे। पहले पुराने इस्तिंजे ट्रेन में कैसे होते थे कि सीधा नीचे गिरता था, तो मना लिखा रहता था कि भाई ट्रेन स्टेशन पर रुकी हो तब आप बैतुल खला का इस्तेमाल न करें। और अब नई सिस्टम के बैतुल खला आ गए ट्रेनों के अंदर फ्लश सिस्टम वाले, तो उसमें भी ये है कि जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई हो तो फ्लश ना डबावे। इसलिए कि स्टेशन के ऊपर अगर आप बैतुल खला में जाएंगे, पाखाना करेंगे, फ्लश दबाएंगे, तो स्टेशन की पटरी के ऊपर पाखाना गिरेगा और जो मुसाफिरीन ट्रेन के जाने के बाद दूसरी ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वो आपका पाखाना देखते बैठेंगे और उनको तबीयत में नफरत होगी, उनको तकलीफ होगी, बदबू आएगी। देखो कैसा दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का काम आपने किया। तो शरीयत मुताहरा कहती है कि इसमें भी एहतियात रखो कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे। छठा मकाम समझो, ट्रेन में, हवाई जहाज में आम पब्लिक के लिए वुजू खाने, इस्तिंजे खाने होते हैं, वहां आप गए और इस कदर आपने बेतहाशा वुजू किया कि सारा भिगा डाला। बाज़ लोग हवाई जहाज में इस्तिंजे खाने में वुजू कर दें, पूरा इस्तिंजा खाना भिगा डाल दें, ट्रेन में पूरा टॉयलेट भिगा डाल दें, इसी तरीके से जो उमूमी बाथरूम वगैरह होते पूरे खराब कर डालते, दूसरों को बाद में इस्तेमाल करने में तकलीफ होती है, कौन गया था सब भिगा भिगा कर डाला, ये भी तकलीफ पहुंचाने का एक मौका है। सातवीं चीज, हम मदरसे वालों के लिए मदरसे के हुजरे में, दारुल इकामा में, दरसगाह में, मदरसे में जो चीज सबके इस्तेमाल की होती है उसको उसकी जगह के अलावा दूसरी जगह रख दिया। अब पानी के गिलास, कूलर और मटके के अलावा हुजरे में ले आए, जहाँ सोना है वहाँ ले आए। अब जो दूसरा बेचारा पानी पीने जाएगा उसको तकलीफ हो जाएगी कि भाई ये कहाँ गया गिलास, कहाँ गया गिलास, वो ढूंढता फिरेगा। तो गर्ज ये, अब कमरे के अंदर जो है रात को साथी सोना चाहते हैं और आप कह रहे मैं तो मुताला करूंगा, जा मस्जिद में मुताला करना है तो दरसगाह में जा। तू अगर आधी रात में 2 बजे लाइट जलाएगा तो दूसरे साथी को सोने में तकलीफ होगी, रात 1 बज गया और क्या कमरे में तकरार करेंगे हम, अबे तकरार करनी है जा ईदगाह में बैठ और तकरार कर। यहाँ कमरे में तकरार करेगा तो साथियों को तकलीफ पहुंचेगी। गर्ज ये कि किसी भी शक्ल के अंदर दूसरे मुसलमान को तकलीफ मत पहुंचाओ। बाज लोग गलत पार्किंग कर देते हैं, इससे तकलीफ पहुंचती है दूसरे लोगों को। तो हदीस शरीफ का मजमून बहुत आम है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, सुभान अल्लाह। उसके बाद एक इस्तिलाह समझो, हदीस शरीफ के अंदर कहा गया कि कामिल मुसलमान वो हैं जो दूसरे मुसलमान को अपनी जबान और हाथ से सलामत रखे। इस तरह आगे रिवायत आ रही है ला युमिनु वाली, कि तुम में से कोई आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता, ऐसी मुख्तलिफ रिवायत आएगी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता हकुना हब इलैहि मिन वालिदिही, इस तरह। तो इस तरह की जो रिवायतें होती है ने, उसके बारे में एक बुनियादी उसूली बात समझ लो। कुफ्र 2 किस्म का है, नंबर 1 कुफ्र हकीकी, नंबर 2 कुफ्र मजाजी, या यूं कहो बड़ा कुफ्र छोटा कुफ्र। बड़ा कुफ्र तो हर एक आदमी समझता है, ये काफिर लोग जो कुफ्र करते हैं वो बड़ा कुफ्र है, छोटा कुफ्र कुफ्र मजाजी वो क्या है, फिस्क गुनाह के काम करना, नाफरमानी के काम करना, वो छोटा कुफ्र कहलाता है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इस्तिलाह बनाई है, कुफ्रुन दून कुफ्रिन, कुफ्रुन दूना कुफ्रिन, और उससे वो मुराद लेते हैं छोटे दर्जे का कुफ्र, यानी फिस्क गुनाह के काम करना, मासियत और नाफरमानी के काम करना, ये इनकी एक मुस्तकिल इस्तिलाह है, कुफ्रुन दूना कुफ्रिन। और इस तरह की हदीस शरीफ के बारे में एक बात हमेशा याद रखने की कि ना किस चीज को कल अदम करार देकर के हदीस में कलाम किया जाता है, ना किस चीज को कल अदम कह करके कलाम किया जाता है। जैसे आपको कहा गया भाई रात 2 बजे तक आपको मुताला करना है, अब आपने सिर्फ 12 बजे तक मुताला तकरार किया, काम नाकिस किया, तो दूसरे दिन आपको कहा जाए भाई आपने तकरार नहीं की, रात में आप सो गए जाकर, तो आप कहोगे उस्ताद 12 से 12 तक मैंने तकरार की थी। तो कहा गया आपको कहा गया था 2 बजे तक तकरार करने की, फिर भी आपने तकरार नहीं की, तो नाकिस को कल अदम करार दिया गया। और इस तरह हदीस शरीफ के अंदर कलाम किया जाता है। तो ये उसूल हर जगह याद रखना, बहुत सी जगहों पर काम आएगा। ना किस चीज को कल अदम करार दे करके कलाम किया जाए, और छोटा कुफर यानी जो फिस्क है उसको ऊपर भी कुफर का इतलाक हो जाए, हालांकि उसने कुफर ईमानी नहीं किया, मासियत का काम किया, लेकिन उसके ऊपर भी ताबीर कौन सी आ जावे, कुफर की ताबीर आ जावे। अब देखिए हदीस में क्या कहा गया, आगे हदीस आ रही है, और इस हदीस में अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मालूम हुआ जो मुसलमान दूसरे मुसलमान को, दूसरे इंसान को अपनी जबान और अपने हाथ से तकलीफ पहुंचावे वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है, वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। यानी नाकिस ईमान और इस्लाम को कल अदम करार दे दिया गया कि उसके अंदर उसके ईमान और इस्लाम में एक नुक्स आ गया कि वो दूसरों को ईजा पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, तो वो नुक्स की वजह से कल अदम करार दे दिया और फरमा दिया कि भाई तू मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है, तू दूसरों को ईजा पहुंचाता फिरता है, दूसरे को तकलीफ पहुंचाता फिरता है। वल मुहाजिरु मन हजर मानह अल्लाहु अन्हु। वल मुहाजिर कामिल हिजरत करने वाला वो है जो छोड़ देवे उस चीज को अल्लाह ने जिससे मना किया है। देखो भाई एक हिजरत किया है, तरके वतन वो एक हिजरत है, और इस हदीस में कहा गया गुनाह मनहियात और हराम को छोड़ना ये भी एक तरह की हिजरत है। आपने मिश्कात शरीफ में रिवायत पढ़ी अय्युल हिजरत अफजल, बेहतरीन हिजरत कौन सी, तो कहा अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है वो छोड़ दो, ये बेहतरीन हिजरत है। तो यहाँ हदीस शरीफ में कहा गया कामिल हिजरत करने वाला वो है कि अल्लाह ने जिस चीज से मना किया है वो उसको छोड़ देवे। इस हदीस शरीफ में एक बात ये सीखने को मिली, अगर कोई आदमी वतन छोड़े अल्लाह के लिए और साथ साथ में गुनाह और नाफरमानी भी अल्लाह के वास्ते छोड़ देवे, ये है कामिल अकमल मुहाजिर। वतन भी अल्लाह के लिए छोड़ा और गुनाह भी अल्लाह के लिए छोड़ दिए, ये अकमल मुहाजिर कहलाएगा। दूसरी बात समझो, वतन तो छोड़ा लेकिन गुनाह नहीं छोड़े तो वो कामिल मुहाजिर कहलाने के लायक नहीं है। वतन तो छोड़ दिया लेकिन गुनाह नहीं छोड़े तो वो कामिल मुहाजिर कहलाने के काबिल नहीं है। इसी तरह समझो, तीसरी बात, हिजरत की 2 किस्म हो गई, हिजरत जाहिरी हिजरत बातिनी। हिजरत जाहिरी क्या चीज है, एक शहर से दूसरे शहर तुम चले गए, हिजरत जाहिरी। और हिजरत बातिनी क्या, गुनाह छोड़ दिए, वो है हिजरत बातिनी। तो हिजरत हकीक जाहिरी तो आसान है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, लेकिन हिजरत बातिनी बहुत मुश्किल, गुनाह छोड़ देना बहुत मुश्किल तरीन काम। और उसको हदीस शरीफ में हिजरत बतलाया, चौथी बात, फितनों की जगह छोड़ देना। अगर ये हिजरत है तो मासी को छोड़ देना, ये भी एक हिजरत है। जहाँ फितने हो रहे हैं, ईमान खतरे में है, ईमानियात खतरे में है, तुमने उसकी वजह से तुमने जगह छोड़ दी, तो फितनों की वजह से तुमने जगह छोड़ दी, तो मासी को छोड़ दो, ये भी एक तरह की तुम्हारी हिजरत कहलाएगी। पांचवी बात, अल्लाह ताला के लिए वतन छोड़ना अगर फजीलत की चीज है तो अल्लाह की मना की हुई चीज को छोड़ना ये भी फजीलत की चीज है। अल्लाह ताला के लिए वतन छोड़ना फजीलत, सवाब, अजर, नेकी, तो फिर अल्लाह ताला की मना की हुई चीज को छोड़ना ये भी फजीलत, अजर, सवाब, नेकी। छठी बात, बहुत से लोगों को दिल के अंदर हसरत रहती है, भाई मैं तो हिजरत नहीं कर सका, मुझे हिजरत का मौका नहीं मिला, मुझे हिजरत का चांस नहीं मिला। खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में कि भाई ला हिजरत बादल फतेही, फतेह मक्का हो चुका, अब हिजरत का मौका नहीं रहा। तो बहुत से लोगों के दिलों में हसरत, भाई हम तो हिजरत नहीं कर सके, फतेह मक्का हो गया, हिजरत का मौका नहीं रहा। आज के ज़माने में लोग यूँ कहे, भाई हमारे पास तो कोई मौका नहीं कि हम हिजरत का सवाब हासिल करें। तो इस हदीस शरीफ में क्या बदलाया, अगर ज़ाहिरी हिजरत का मौका नहीं है तो ये बातिनी हिजरत का मौका तो मौजूद है, तुम उससे क्यों महरूम रहते हो। बातिनी हिजरत यानी तरके मासी, तरके गुनाह, वो करो। ये बहुत बड़ा सबक है कि भाई इस दौर के अंदर हिजरत तुम करो गुनाह को छोड़ करके। अब हमारे तलबे अजीज दोनों हिजरत का सवाब हासिल कर सकते हैं, वतन छोड़ के मदरसा आए, ये हुसूल इल्म के लिए हिजरत है। अब यहाँ अगर गुनाह छोड़ दे रहे तो जाहिरी और बातिनी दोनों हिजरत का अल्लाह के यहाँ सवाब मिल जाएगा। कितना बड़ा बेहतरीन मौका है कि जाहिरी हिजरत तो माशाल्लाह कर ली, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, मदरसे में आ गए, अब हकीकी हिजरत भी, बातिनी हिजरत भी कर लो, गुनाह छोड़ दो, मासियत छोड़ दो, ताकि दोनों तरह की हिजरत का अल्लाह ताला के यहाँ सवाब मिल जावे। قال ابو عبد الله, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब देखो पहली सनद जो थी ना, पहली सनद में एक बात देखो, हद्दसना आदम इब्न अबी इयासिन قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن ابي السفري, तो इसमें इमाम शोबा रहमतुल्लाह अलैह के पहले उस्ताद है अब्दुल्ला बिन अबी सफर, फिर क्या लफ्ज है, व इस्माइल, ये वाव ला के क्या बतलाना है, इमाम शोबा के दूसरे उस्ताद है हजरत इस्माइल इब्ने अबू खालिद अल इहमसी, तो गोया हजरत शोबा के दो उस्ताद को बतलाना है, एक अब्दुल्ला इब्ने अबू सफर और दूसरे उस्ताद कौन, इस्माइल, ये दो उस्ताद से ये रिवायत नकल करते हैं। और भाई ये शाबी है ना, कोई मामूली आदमी नहीं है, याद रखना, आमिर शाबी तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद होते हैं, यानी शाबी ये। अब ये दूसरी बात लाए, वकाल अबू मुआविया, तो अबू मुआविया मोहम्मद इब्ने खाजिम फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की दाऊद इब्ने अबी हिंद ने, और वो नकल करते हैं आमिर शाबी से, आमिर इब्ने शराहिल शाबी से, قال سمعت, ये आमिर कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हो को सुना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल कर रहे थे। एक बात हो गई, फिर अब्दुल आला अस्सामी अल कुरैशी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह से, और दाऊद आमिर शाबी से और वो अब्दुल्ला बिन अम्र से और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल करते हैं। ये जो जायद बातें लाए इसका फायदा किया, ये जो जायद सनद लाए ना इमाम बुखारी कौल अबू अब्दुल्ला कहकर उसका फायदा किया। नंबर एक समझो फायदा, इस सनद की तकवियत दूसरी सनद से बतलाई गई कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को जो एक सनद से नकल किया तो दूसरी सनद से भी उसकी तकवियत हो रही है, गोया कुव्वत है सनद के अंदर, तकवियत। नंबर दो, दूसरा फायदा देखो, पहली सनद में अनिशाबी है तो दूसरी सनद में अन आमिर है, वो या दूसरी सनद का फायदा ये हुआ कि इमाम शाबी के नाम की सराहत हो गई कि शाबी से इमाम आमिर इब्ने शराहिल शाबी है, ये सराहत हो गई नाम की। तीसरी बात समझो, आमिर शाबी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र से ये हदीस बराहे रास्त सुनी है, इसकी तस्री दूसरी सनद में है। देखो पहली सनद में क्या है, अनिशाबी अन अब्दुल्ला इब्ने अम्रिन, वहां अन अना है, पहली सनद में अन अना है और दूसरी सनद में क्या है, अन आमिरिन कॉल समितु अब्दुल्ला इब्ने अम्रिन, तो पहली सनद के अंदर सिमात की सराहत नहीं है, अन अना है और दूसरी सनद के अंदर सराहत है कि हजरत आमिर शाबी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से सराहतन खुद ये रिवायत बिला वास्ता सुनी है, इरसाल नहीं है। तीसरी बात चौथा फायदा समझो, शौबा रहमतुल्ला अलैह की रिवायत में अन अना है, इमाम बुखारी के उस्ताद हद्दसना आदम उनके उस्ताद शौबा उस सनद के अंदर अन अना है और ये जो दूसरी सनद लाए उसके अंदर अन अना नहीं बल्कि उसके अंदर सीमा का लफ्ज मौजूद है, इसीलिए वो आला दर्जे की बात हो गई। गोया के दूसरी सनद लाकर के कई फवाइद, एक पांचवा अहम फायदा समझो कि हदीस की सनद में जब कभी अब्दुल्ला मुतलक बोला जाता है तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुराद होते हैं, लेकिन यहाँ सराहत मौजूद है कि अब्दुल्ला से मुराद अब्दुल्ला इब्ने अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हो है, न कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुराद है। देखो दूसरी सनद में क्या आया, अन आमिरिन अन अब्दुल्लाहि अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहां किसी को वहम हो सकता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुराद है, लेकिन बाकी दो सनद में क्या आया, अनिशाबी अन अब्दुल्ला इब्ने अम्रिन कॉल समितु अब्दुल्ला इब्ने अम्रिन, तो दो दो जगह सराहत आ गई कि अब्दुल्ला से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुराद नहीं बल्कि कौन है, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु मुराद है। तो ये मजीद सनद लाने के ये मजीद फवाइद हो गए जी। अय्युल इस्लामी अफदलु, रब्ते बाब तो बतला दिया गया था तीन चार बाब तक, लफ्ज़े अय्युन आया है, अय्युन का लफ्ज़ मुतअद्दद चीजों के ऊपर दाखिल होता है, तो यहां क्या मुतअद्दद चीजें हैं, नंबर एक अय्यु अहवालिल इस्लामी अफदलु, अय्युल इस्लाम से मुराद है अहवाले इस्लाम, कि इस्लाम के तो बहुत से अहवाल है, उसमें कौन सा हाल सबसे बेहतर है, अफजल है। नंबर दो, अमाल मुकद्दर मानो। अयु अमालिल इस्लामी अफजलु, इस्लाम के अमाल में से कौन सा अमल अफजल है। नंबर तीन, उमूर को मुकद्दर मानो। अयु उमूरिल इस्लामी अफजलु, इस्लामी उमूर और काम में से कौन सा अम्र और काम सबसे ज्यादा अफजल है। नंबर चार, खिसाल को मुकद्दर मानो। अयु खिसालिल इस्लामी अफजलु, इस्लाम की खसलत में से कौन सी खसलत सबसे अफजल है। फिर एक नुक्ते की बात याद रखना, इस्लाम की खसलतें, उमूर, आमाल, अहवाल सब मुख्तलिफ हैं, इस्लाम तो एक है। इस्लाम तो एक है, उमूर, अहवाल, खसलतें ये सब मुख्तलिफ है, इस्लाम एक है। वो बसीत और मुरक्कब वाली झंझट नहीं रह रहे, इसलिए ये जुमला इतना काफी है। अब देखिए, हद्दसना सईद इब्न, हां पढ़ो भाई। अरे अब तो हो, पढ़ो हद्दसना सईद इब्न। ज़रा ये सनद की खूबी देखिए, इमाम बुखारी अजीब अजीब खूबियां लाते हैं सनद में। इस सनद के तमाम रुवात कूफी है, एक भी रावी सूफी नहीं है। ये सूफी कूफी वाला नहीं है, ये कूफा के रहने वाले मकाम के एतबार से। सईद इब्ने यहिया इब्ने सईद अल उमवी अल कुरैशी दूसरे नंबर पर हैं। قال حدثنا ابي, इनके वालिद है यहिया। قال حدثنا ابو برده, ابو برده का नाम है बुरेद, इनका नाम है बुरेद, बुरेद इब्ने अब्दुल्लाह बिन अबी बुरदा। इस रिवायत में एक दूसरी खूबी देखो कि حدثنا ابو برده यानी बुरेद, बुरेद इब्ने अब्दुल्ला बिन अबी बुरदा अपने वालिद अबू बुरदा से नकल करते हैं, और वो जलीलुल कदर साहबी हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते हैं। ये जो अबू बुरदा है ना, इनका नाम है आमिर। अब ये रिवायत में क्या है, बेटा, बाप, दादा, देख लिया रिवायत में। दादा जान कौन, हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाहु ताला अन्हु। बेटे जान कौन, अबू बुरदा आमिर। पोते जान कौन, अबू बुरदा इब्ने अब्दुल्ला बिन अबी बुरदा यानी बुरेद, वो पोते जान। तो हजरत अबू मूसा रदी अल्लाहु ताला अन्हु से उनके बेटे रिवायत नकल करते हैं, ये बेटे से उनके पोते नकल करते हैं। देखो कैसे एक ही खानदान के तीन रावी, दादा, बाप, पोता, इस तरीके से ये सनद में ये दूसरी खूबी हो जाएगी। قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है अब्दुल्ला इब्ने कैस अल अशअरी, कबीले अशअर से इनका ताल्लुक है। अल्लाह ने इनको हुस्ने सौत की दौलत से नवाजा था। आपने मिश्का शरीफ में हदीस पढ़ी, लकद उती तमिजमार मिन मजामीरी आली दाऊद, कि अबू मूसा आपको तो जो है आले दाऊद की बंसरियों में से एक बंसरी जैसी आवाज, अल्लाह ने हसीन आवाज अल्लाह ने आपको अता फरमाई। कहते हैं कि सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अय्युल इस्लामी अफदलु, ایو زویل اسلام افضل، ایو الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ اب ابھی چار احتمالات آپ کو بتلا دیے. ایک بات یہاں کیا ہو سکتی ہے، زویل اسلام افضل، اور مسلم شریف کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر مطلب کیا نکلے گا، اسلام والوں میں کون سے افضل ہے، جن کو اسلام کی دولت ملی ہے نا، اس میں کون سے لوگ افضل ہیں؟ اور باقی چار احتمال باپ کے ترجمے میں بتلائے گئے. اب دیکھیے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موقعوں پر سوالات آئیں گے آگے، ایو الاسلام افضل، ایو الایمان افضل، اور ہر جگہ جواب الگ الگ ہے. یہاں کیا جواب دیا، من سلم المسلمون من لسانه ویده، یہاں یہ جواب دیا، کبھی اور جواب آئے گا، کبھی اور جواب. تو یہ جواب بدل جانے کی وجہ کیا وہ یہی سمجھ لو. نمبر ایک، سائل کی کیفیت کے اعتبار سے اور سائل کے حالات کے اعتبار سے جواب بدلتا رہتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سائل جو ہے وہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ کون سا اسلام افضل، اسلام کی کون سی خوبی افضل، تو اس سائل میں کون سی کوتاہی ہے، اس کوتاہی کے اعتبار سے حضور نے جواب دیا ہے. سائل کے حالات، سائل کی کیفیت کے اعتبار سے جواب بدلتا رہتا ہے. نمبر دو، حاضرین مجلس کے احوال کے اعتبار سے جواب بدل جاتا ہے. حاضرین مجلس کے احوال کے اعتبار سے، اب ایک مجلس میں سوال کیا گیا کہ ایو الاسلام افضل، تو مجلس میں جو مجمع موجود ہے ان کے حالات کے اعتبار سے جواب بدل جاتا ہے. بھائی جس علاقے میں جو برائی ہو، جو کمی ہو، جس کام کی ترغیب زیادہ دینے کی ہو، اس اعتبار سے جواب بدل جاوے. لہذا ہمیں بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے. کسی جگہ کوئی آپ کو کہے کہ بھائی آج کل کے حالات کے اعتبار سے اہم چیز پر آپ بیان کیجئے، دیکھنے کا کہ وہاں لوگ کس چیز میں مبتلا ہے. اب وہاں کے لوگ بھائی زیادہ شراب پیتے ہیں تو شراب کے موضوع پہ بیان کر دیں گے، کسی جگہ لوگ جو ہے سود میں مبتلا ہے تو سود پہ بیان کر دیں گے. اب کہے لوگ کہ بھائی آپ کا خادم کہے کہ حضرت آپ جو ہے کالو پور گئے تھے وہاں شراب پہ بیان کیا، لوگوں نے پوچھا آپ اہم ترین موضوع پہ بیان کیجیے، آپ نے شراب پہ بیان کیا. پھر آپ جو ہے سفید پور میں گئے وہاں بھی لوگوں نے آپ سے کہا حضرت اہم ترین موضوع پہ بیان کیجیے، تو آپ نے تو وہاں سود پہ بیان کیا. کیوں، ہر جگہ لوگ کہتے ہیں اہم موضوع پہ بیان کیجیے اور آپ کا بیان بدل جاتا ہے، بات کیا ہے؟ بھائی مقامی لوگوں کے حالات کے اعتبار سے میرا مضمون بدل جاتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بدلا، مجلس میں حاضرین کے احوال کے اعتبار سے. نمبر تین سمجھو، خاص اوقات کے اعتبار سے کسی اہم عمل کی طرف توجہ دلانے کے اعتبار سے جواب بدل جاتا ہے. خاص وقت، خاص موقع، مثلا رمضان کا مہینہ ہے اور کسی نے آپ کو پوچھا مولانا صاحب رمضان میں میں کون سا عمل سب سے افضل ہے بتلاؤ، آپ کہیں گے روزہ رکھ، ترائی پڑھ، تلاوت کر، زکات نکال، رمضان کا موقع ہے اعتکاف کر، رمضان کے اعتبار سے یہی افضل ہے. بقرعید آ رہی ہے اور پوچھ رہا ہے کہ مولانا صاحب کوئی اہم عمل بتلاؤ میں کروں، قربانی کر. تو وقت، زمانہ، ٹائم کون سا چل رہا ہے، اس اعتبار سے جواب بدلتا رہتا ہے. کہ بھائی رمضان کا موقع ہے، اب سمجھو کہ کوئی قتال کا تقاضے کا موقع ہے اور کسی صحابی نے سوال کیا ایو الاسلام افضل، حضور فرمائیں گے جاؤ قتال کے اندر، یہ افضل ہے اس وقت پر. موقع ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں انفاق کی ضرورت ہے. اب کسی نے پوچھا کہ حضور اس وقت کون سا عمل اسلام میں افضل ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. तो वक्त जमाना उस एतबार से कौन सा अमल ज्यादा इस वक्त अहम है, उस एतबार से जवाब में तब्दीली आती है। नंबर चार, चौथी बात समझो, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के एतबार से जवाब बदलता है कि बाज मरतबा आदमी ने सवाल किया और वो हुकूकुल्लाह में कोताही करने वाला है तो उसको हुकूकुल्लाह में से कोई चीज बतला दी कि भाई अय्युल इस्लामी अफजल, देखा कि ये नमाज नहीं पढ़ता है, देखा चल नमाज पढ़, ये इस्लाम में अफजल तरीन अमल है। अब देखा कि ये नमाज तो बहुत पढ़ता है लेकिन लोगों को तकलीफ बहुत देता है तो कह दिया कि मन सलीमल मुस्लिमों ने मिल लिसानी ही वह दी। तो हुकूकुल्लाह की कोताही या हुकूकुल इबाद की कोताही की तरफ तवज्जुह दिलाने के एतबार से भी जवाब के अंदर तब्दीली आती है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का हुआ है कि लोगों ने पूछा कि अय्युल इस्लामी अफदल, कौन सा इस्लाम जो है सबसे अफजल है, इस्लाम की कौन सी खसलत सबसे अफजल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सारी बातें पीछे हो चुकी इस टुकड़े के ऊपर। समझो कि माशरा और समाज के एतबार से अफजल तरीन चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी कि अगर माशरती जिंदगी है, सामाजिक जिंदगी है, तो ऐसी जिंदगी गुजारो कि तुम्हारी जात से किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। बल्कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुण बतला दिया कि अपने आप को सलामत रखना है तो तुम दूसरों को सलामत रखो। तुम ये चाहते हो कि तुमको कोई तकलीफ न पहुंचावे तो तुम दूसरों को तकलीफ मत पहुंचाओ। अपने आप को अगर दूसरों की ईजा से सलामत रखना है तो तुम दूसरों को ईजा मत पहुंचाओ। देखो कोई तुमको माँ बहन की कब देगा, जब तुम उनको दोगे तो वो जवाब में तुमको रिप्लाई करेगा। लेकिन तुम किसी को जो है इकरामी अल्फाज कहोगे तो वो भी आपको इकरामी अल्फाज कहेंगे। तो अपने आप को सलामत रखने का बेहतरीन तरीका तुम दूसरों को सलामत रखो तो दूसरे आपको सलामत रखेंगे। बहुत कम नफ्फट लोग ऐसे होते हैं कि आपने उसको छेड़ा नहीं, तकलीफ नहीं पहुंचाई, परेशान नहीं किया, फिर भी वो आपसे लड़ने मरने खड़े हो जावे। ऐसे दुनिया में नंग होते हैं लेकिन कम हुआ करते हैं। चलो असीली रहमतुल्लाह अलैह के नुस्खे में यहाँ मिनल ईमान है, हमारे सामने नुस्खे में है बाबु इत्आमुत्तआमी मिनल इस्लामी, दूसरे नुस्खे में है बाबुन इत्आमुत्तआमी मिनल ईमानी। दोनों एक ही है इमाम बुखारी के नजदीक, तो ईमान हो के इस्लाम हो, इसलिए उनके यहां कोई मगजमारी ही नहीं। इस तरजमतुल बाब के अंदर ये बतलाना है कि खाना खिलाना ये भी इस्लाम का बड़ा अहम तरीन हिस्सा है, बड़ा अहम तरीन हिस्सा खाना खिलाना। पस मंजर समझो, इब्तिदाए हिजरत का दौर है, मुहाजिरीन मक्का से हिजरत कर करके मदीने पाक पहुंच रहे हैं। अब परदेसी आदमी किसी जगह जाए तो उसको सबसे पहले जरूरत पड़ती है खाने की, रहने की, रोटला ने ओटला दो चाहिए परदेसी को, और क्या चाहिए। लिहाजा चूंकि मुहाजिरीन हिजरत करके आ रहे हैं, खिलाने की ज्यादा अहमियत ही, घर छोड़ के आ रहे, इसलिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसे पाक के अंदर खाना खिलाने की अहमियत बतलाई। ये अंसारियों, ये मुहाजिरीन जो आ रहे हैं इनको खाना खिलाओ, इनकी भूख की जरूरत पूरी करो। देखो हजरत मूसा अलैहि सलाम इमरजेंसी में हिजरत करके मिस्र से मदियन पहुंचे तो वहां आपने क्या दुआ की, रब इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह 8 दिन का भूखा हूँ, इस वक्त तो जो खैर भी आप मेरे लिए नाजिल करेंगे बंदा उसका मोहताज है। तो जब आदमी हिजरत करके किसी जगह जाता है तो बड़ी जरूरत होती है खाना खाना। दूसरी जरूरत क्या होती है? कोई नया आदमी जब किसी इलाके में आता है तो उसको मानूस करने की जरूरत पड़ती है, उसको ऐसा ना लगे कि भाई तू बाहर का हम यहाँ के, कोई उससे बात भी नहीं कर रहा है, कोई उसको मिलजुल भी नहीं रहा है, तो उसको वहशत महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी, डर महसूस होगा। तो उसको मानूस करने के लिए जरूरत पड़ेगी सलाम की, कि परदेसी आदमी आया, बाहर का आदमी आया, हर एक मकामी आदमी सलाम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो आदमी के दिल में कितनी अच्छी बात लगेगी, अच्छा अच्छा यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, सामने से सलाम करते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, इकराम से पेश आते हैं। तो उसको वहशत भी नहीं होगी, घबराहट भी नहीं होगा। तो शुरू हिजरत का दौर है, मुहाजिरीन आ रहे हैं, खिलाने की भी जरूरत है और उनको मानूस करने की भी जरूरत है। इसीलिए हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाना और सलाम करने की तरगीब दी। देखो भाई, ये भी एक अहम तरीन शोबा है, याद रखो। कोई बाहर का आदमी आपके महल्ले में, आपके शहर में आके आबाद हुआ तो उसको मानूस करो, उसको ऐसा महसूस कराओ कि भाई आप यहाँ अजनबी नहीं हो। ये भी एक बहुत बड़ी अखलाकी चीज़ है, बहुत बड़ी अखलाकी चीज़ है। खास मरतबा ऐसा होता है कि कोई बाहर का आदमी आपके महल्ले में, आपकी बस्ती में आके मुकीम हुआ, कोई बेचारे को मिलता जुलता नहीं है, उसके घर में कोई बीमार हो गया तो कहाँ अस्पताल है, कहाँ डॉक्टर है, कोई उसको रहबरी करने वाला नहीं, बाजार मार्केट की कोई रहबरी करने वाला नहीं, बेचारा घबराया घबराया परेशान परेशान रहता है। इसलिए ये भी एक बड़ा अहम तरीन जो है संगीन मामला है कि बाहर से आकर बसने वालों को मानूस किया जाए, उनको उल्फत दी जावे, उनको उन्स दिया जाए, जो काम अंसारे किराम ने अंजाम दिया। अब इस हदीस की सनद की खसूसियत यह है कि तमाम मिसरी रुवात है, तमाम मिसरी रावी है। हद्दसना अमर इब्न खालिदिन क़ाला हद्दसना लैस, वो इमाम लैस इब्न साद मिस्र में, अन यजीद, यजीद ये भी ताबिई है, अन अबिल खैर मरसद इब्न अब्दुल्ला, अन अब्दुल्ला इब्न अमरिन, ये आखिरी जमाने में मिस्र में मुकीम हो गए थे, चूंकि हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हों के हाथ पर मिस्र फता हुआ, आप वहीं मुकीम हो गए, तो आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र भी मिस्र में मुकीम हो गए। बाप फातेह मिस्र, बेटे भी वहीं मुकीम हो गए, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र ये सहाबी है। चलो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया, कौन है साइल? पहला कौल है हजरत अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु साइल है। दूसरा कौल ये है कि हानी इबन मरसद सा के साथ वो साइल है, कि एक आदमी ने सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अय्युल इस्लामी खैर, वो सब चीज़ें यहाँ मलहूज रखने की, अय्यु उमूरिल इस्लामी खैर, अय्यु खिसालिल इस्लामी खैर, अय्यु अहवालिल इस्लामी खैर, वो सब चीज़ें मलहूज रखने की, कि कौन सी खसलत इस्लाम में बेहतरीन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुत्इमुत्तआम, तुम खाना खिलाओ, तुम खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, ये बेहतरीन इस्लाम है, बेहतरीन दीन है। देखिए यहाँ चंद बातें समझो, तो आम मुतलक है, कौन सा खाना खिलाना उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायीन नहीं फरमाई। कोई भी चीज खिलाओ, यही खिलाने का वही खिलाने का, ऐसी तायीन मुनासिब नहीं है। बाज़ लोगों ने तायीन कर रखी है ने कि मुहर्रम में खिचड़ा ही खिलाने का, रबीउल अव्वल के अंदर वो खीर और चुंगे पूरी खिलाने के, ये तायीन बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से कर रखी है। ये तायीन मुनासिब नहीं, मुतलक जो खाना तुमको मुनासिब मिल गया वो खिलाओ। हाँ, वो बात याद रखने की, क्या कि भाई जो चीज तुम नहीं पसंद करते वो दूसरे मुसलमान के लिए मत पसंद करो। तो जो सड़ा हुआ बदबूदार ठड़कलास खाना तुम पसंद नहीं करते वो दूसरे को नहीं खिलानी, वरना ये कि खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। तुत इमुत ताम, और आपको मालूम है कि मुजारी इस्तिमरार पर दलालत करता है। कोई आदमी एकात मर्तबा खिला देवे और कह दे कि मैंने तो दावत की थी, शानदार दावत की थी, अजीम शान दावत की थी, उससे काम नहीं चलेगा भाई। तुत इमुत ताम, खिलाते रहो खिलाते रहो, इस्तिमरार दवाम खिलाते रहो, तो जाके इस्लाम की खूबी तुमको हासिल होगी। देखो वो वाकी आपने मिश्कात में भी पढ़ा, यहाँ बुखारी में भी पढ़ेंगे, तीन चार मकामात पर बुखारी शरीफ में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाहु ताला अन्हो के ईमान का वाकिया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए, तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाहु ताला अन्हो मुलाकात के लिए आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अकदस से मदीना की सरजमीन पर, उस वक्त तो वो यहूदी थे, जो सबसे पहला कलाम सुना वो क्या सुना था, या अय्युहन्नास अब्शुस्सलाम वअत्इमुत्तआम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। वो मदीना की सरजमीन पर अव्वल कलाम में भी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला ने क्या सुना था, खाना खिलाओ खाना खिलाओ खाना खिलाओ। लिहाजा भाई खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। इसमें क्या है, आदमी तकल्लुफ से पाक हो जावे ने तो ये सवाब बहुत आसान है। असल में तकल्लुफात ने ये नेकी को मुश्किल बना रखा है कि भाई पूछा कि मेहमान है, जमात है, मदरसे के सफीर है, खाना खिलाएंगे, तो घरवाली क्या कि नहीं नहीं दाल है वो थोड़ी खिलावावे, तुम जाओ गोश्त ले आओ तो खिलाऊं। अब शोहर के तहत पैसे कहाँ हैं कि गोश्त लेने जाऊं, ये तकल्लुफ आया इसलिए गड़बड़ आ गए। तकल्लुफ खत्म करो, घर में जो है वो खिला दो, आमलेट है तो आमलेट खिला दो, अरे कुछ नहीं अचार रोटी खिला दो। माँ तयसर के ऊपर आ जाओ तो ये नेकी बहुत आसान हो जाएगी, तकल्लुफ करने जाओगे तो ये नेकी मुश्किल हो जाएगी। तुत इमुताम वाली नेकी, इसीलिए माँ तयसर जो मयसर हो वो खिला दो। हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम आपकी खूबियों में से इकरामु ज़ईफ, मेहमान का इकराम करना, मेहमान का इकराम करना। तो ये है खाना खिला। अब और बातें भी इसमें समझो, हकीकी गरीब को खाना खिलाओ, हकीकी गरीब वाकियतन गरीब हो जो आदमी, उसमें हर तरह के गरीब आ गए, माल के एतबार से भी गरीब और वतन के एतबार से भी गरीब। एक आदमी माल के एतबार से गरीब है, बेचारे को खाना मयसर नहीं है, आप खाना खिलाओ। एक वतन के एतबार से गरीब है यानी मुसाफिर है, आपके महल्ले में आया, आपकी बस्ती में आया, आपकी मस्जिद में आया, उसको घर ले जाके खाना खिलाओ। मदरसे का सफीर आ गया, जमात आ गई, चंदे वाला आ गया, फकीर आ गया, उसको खाना खिलाओ। नंबर दो, मेहमान, मेहमान को खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी। नंबर तीन, अहलो अयाल को भी खाना खिलाना बहुत बड़ा सदका है। जैसे गैर गरीब को सदका सवाब है, अहलो अयाल गरीब को भी खाना खिलाना बहुत बड़ा सदके का साथ। अहलो अयाल गरीब होके मालदार हो, बीवी बच्चों का खर्चा अपने जिम्मे है, उनको खिलाओ, बहुत बड़ा सदके का सवाब है। वो हदीस पढ़ी ना अपने मिश्कात शरीफ में, वो लुकमा मुंह में रखने वाला बीवी के मुंह में, वो भी तो खाने ही से ताल्लुक रखने वाली चीज है। नंबर चार, सवाब के एतबार से मरातिब अलग अलग है, यानी जो जितना ज्यादा जरूरतमंद होगा उसको खाना खिलाने से ज्यादा सवाब, जो जितना ज्यादा जरूरतमंद उसको खाना खिलाने से ज्यादा सवाब मिलेगा। कि भाई एक आदमी बेचारा बिल्कुल गरीब मफलूकुल हाल, उसको खाना खिलाया तो ज्यादा सवाब मिलेगा। अब एक आदमी अच्छे हालात का है उसको खिलाया तो भी सवाब तो मिलेगा। तो नफ्से सवाब से बहस नहीं है, सवाब के मरातिब के बड़ा सवाब अगर खाना खिलाना क्या चाहिए तो जितना ज्यादा गरीब मोहताज परेशान आदमी ढूंढ के खिलाओ तो आपको इतना ज्यादा सवाब और अजर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तुतइमुत्ताम, खाना खिलाओ, ये बहुत बड़ी नेकी है। और आपको जब शुरू में आदाब बयान किए थे तब वाकिया सुनाया था ने, कि भाई एक जमाना था कि हमारे ये अकाबिर जो हमारी सनत के बड़े असास हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी, खुतबे आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जिस जमाने में देहली में बगर्ज़े तालीम मुकीम थे, उस जमाने के अंदर कोई मदरसों में खाने का इंतजाम नहीं था, वो तो मुहद्दिसीन के यहाँ पढ़ने का खाने का इंतजाम खुद करने का। तो ऐसे वाकयात भी हमारे अकाबिर के हैं कि वो मस्जिद में अजान की इमामत की या एक मस्जिद के मुतवल्ली नाबीना को मस्जिद लाने ले जाने की खिदमत कर रहे हैं और उनको जो खाना मिल रहा है दो रोटी चार रोटी, वतन से कोई दूसरा तालिब इल्मा आ गया तो कहने लगा कि भाई मेरे पास खाने का कोई निज़ाम नहीं है। तो ये पहले से आया हुआ तालिब इल्म क्या कहता है, भाई दो चार रोटी मुझे मिलती है, अब उसमें से आधी तू खा लेगा आधी मैं खा लूंगा। इस तरह भी हमारे अकाबिर ने इल्म हासिल किया, ये भी तो खाना खिलाने की एक शक्ल है। आप घर से आते हो तो वालिदा मोहतरमा डिब्बा भर के आपको देती है, यहाँ दूसरे साथी है गरीब घर के, उनकी वालिदा बिचारी कुछ नहीं देती है, तो आप अपने डिब्बे में से उनको भी कुछ खिलाइए, ये भी तुतइमुत्ताम हो गया। आप साहिब हैसियत घराने के मालदार घर के तालिब इल्म हो, दूसरे आपके साथी कुछ गरीब और फकीर घराने के जिनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है, तो आप जो है खा रहे हैं तो उनको भी कभी खिला दिया साथ में ले जा करके, कम से कम लजीज नहीं सही जनता में ले जाके खिला दिया। मा तयसर तुतइमुत्ताम व तकरउस्सलाम। देखो अरबी मुहावरा है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सलाम कहलवाया, सलाम कह देना, और अरबी मुहावरा क्या, और तुम सलाम पढ़ो तकरउस्सलाम, ये अरबी मुहावरा, हर जगह के मुहावरे अलग अलग होते हैं। और तुम सलाम पढ़ो उस पर जिनको तुम पहचानते हो या जिनको तुम पहचानते न हो, हर एक को तुम सलाम पढ़ो, सलाम कहो, पहचानते हो या पहचानते न हो। अब देखिए, मन अरफ्त व मल्लम तारीफ का मतलब समझो। हजरत उस्ताद मुफ्ती सईद साहब नवरल्लाहु मरकदहू ने बहुत शानदार तौजीह फरमाई, फरमाते हैं कि मिल्ली तारुफ तो जरूरी है, शख्सी तारुफ जरूरी नहीं है। मिल्ली तारुफ का क्या मतलब, जिसको सलाम करना हो उसका मुसलमान होना तो जरूरी, यानी आप सामने वाले को पहचानते हो कोई मुसलमान है तो सलाम करो, मिल्ली तारुफ होना चाहिए। मिल्ली तारुफ यानी सामने वाला मिल्लत इस्लामिया पर है तो ही सलाम करने का, आपको मालूम है कि ये मिल्लत इस्लामिया पर नहीं है तो सलाम नहीं करने का। शख्सी तारुफ जरूरी नहीं, यानी मालूम है कि ये मुसलमान है लेकिन आप पहचानते नहीं ये मुसलमान कौन है कहाँ के हैं, ये जरूरी नहीं। तो मिल्ली तारुफ शर्त है, शख्सी तारुफ शर्त नहीं है। क्या आप इसको पहचानते हो कि पहचानते न हो, बल्कि ये बात जरूरी है कि भाई लोग तआरुफ की बुनियाद पर सलाम करने लगे, ये तो ईमान की कमजोरी की बात है। तआरुफ की बुनियाद पर सलाम करने लगे ये तो ईमान की कमजोरी की बात है। कैसे? देखो इसकी एक मिसाल समझो। आपका कोई दोस्त है और सामने से एक आदमी आ रहा था, आप समझे वो मेरा फुलाना दोस्त है, ये समझ करके आपने उसको सलाम किया। फिर जब करीब गए तो पता चला कि नहीं 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 ये मेरा दोस्त नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? सॉरी भाई, माफ करना, मैं तो समझा मेरा वो दोस्त है इसलिए मैंने सलाम किया था। कि आपने कौन सी गलती कर डाली कि आपको माजरत पेश करने की जरूरत पड़ी? मालूम हुआ कि आपका सलाम इस्लाम की बुनियाद पर नहीं रहा। कौन सी बुनियाद पर हुआ? दोस्ती और तारुफ की और ताल्लुक की बुनियाद पर हुआ। ये ईमानी इस्लामी सलाम नहीं हुआ। हदीस शरीफ तो क्या कह रही है? तुम पहचानते हो के न पहचानते हो, तारुफ हो के न हो, सलाम करो। ये है हदीस शरीफ की तालीम। हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अब ऐसा मुझे लग रहा है कि मौलवी लोग, मदरसे वाले लोग सिर्फ चंदा देने वालों को सलाम करेंगे। का अब मुझे ये खतरा है, ऐसा जमाना नजर आ रहा है कि जो चंदा देवे उसी को सलाम करेंगे, बाकी किसी को सलाम ही नहीं करेंगे। और ऐसा हो भी रहा है भाई, कुछ कुछ तो होना शुरू हो गया है। हालांकि इस्लाम की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर सलाम करो। चंदा देवे न देवे, हदिया देवे न देवे, ताल्लुक हो न हो, दोस्ती हो न हो, पहचानते हो न हो, लेकिन सलाम का रिवाज आम करो, सलाम को फैलाओ। अब ये सलाम क्या चीज है वो समझो। दुनिया और आखिरत की सलामती की दुआ है ये। अस्सलामु अलैकुम सलामती की दुआ है, और वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु आ गया तो तीन तीन दुआ हो गई। और जितने लोगों को आप सलाम करो या जितने लोग आपको सलाम करें, उसमें से एक की भी दुआ अगर कबूल हो गई तो आपका बेड़ा पार हो गया कि अल्लाह तुम्हें सलामत देवे रखे, अल्लाह तुमको रहमत देवे, तुमको बरकत देवे, तो अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक की भी ये दुआ कबूल हो गई तो। और जो है आपने हदीस में पढ़ लिया, मुसलमानों में मोहब्बत पैदा करने का ये बेहतरीन जरिया है। सलाम की बरकत से मोहब्बत पैदा होती है। फिर सलाम अपने घर वालों पर भी। बाज लोग क्या सोचते हैं कि बीवी बच्चों को, अम्मा अब्बा को क्या सलाम करने का, सीधे दरवाजा खोले घुस गए। नहीं, बीवी को, बच्चों को, घर वालों को, अब्बा को, अम्मा को, सबको सलाम करो। लेकिन चंद मसाइल भी समझ लो सलाम के बारे में। नंबर एक, सलाम करने से दूसरे को तकलीफ होती हो तो सलाम नहीं करना चाहिए। सलाम करने से दूसरे को तकलीफ होती हो तो सलाम न करना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी तिलावत कर रहा है, आपने जाके सलाम किया तो बेचारे को तिलावत रोकनी पड़ेगी। ऐसे जरूरी नहीं कि वो जवाब दे, लेकिन बेचारे को तिलावत में डिस्टर्ब होगा तो सलाम क्यों करते हो। नंबर दो, कोई आदमी काम में मशगूल हो और आपके सलाम की वजह से उसकी मशगूली में खलल पैदा होगा तो सलाम मत करो। नंबर तीन, दो आदमी आपस में किसी बात में मशगूल हो तो बीच में आके सलाम मत करो, वरना रुकावट पैदा हो जाएगी। नंबर चार, सबक पढ़ा रहा है तो वहां जाके अस्सलामु अलैकुम करके आ गए, ले ये सबक में खलल करने वाला कौन आ गया? इस सलाम से तो हमको तकलीफ पहुंची, हमारे सबक में खलल पहुंच गया। नंबर पांच, कोई आदमी किसी काम में मशगूल हो और सलाम की वजह से उसकी मशगूली में हरज पैदा होता हो, खा रहा है बैठ करके, और तुम जाकर के अस्सलाम वालेकुम यानी मुझे भी शामिल कर लो, अस्सलाम लिशमूल, इस तरीके। गर्ज ये कि जहां इस तरीके की कोई बात हो तो ऐसे मौके पर सलाम के मामले में एहतियात करना चाहिए, ऐसे मौके पर सलाम से एहतियात बरतना चाहिए। बहरहाल ये दो अहम तरीन चीज हदीस शरीफ में बतलाई गई, खाना खिलाना सलाम पढ़ना, और दोनों की बड़ी अहमियत है शरीयत मुताहरा में, और उसको इस्लाम का बेहतरीन हिस्सा बतलाया गया।